एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम गोता लगा रहे हैं मिथकों की दुनिया में, वो प्राचीन कथाएं जो सदियों से हमारी संस्कृतियों को आकार देती आई हैं।
हाँ, देवताओं की, नायकों की, सृष्टि की कहानियां कितनी दिलचस्प होती हैं ये।
बिल्कुल, लेकिन आज हम सिर्फ कहानियां सुनेंगे नहीं।
नहीं, हम समझेंगे कि विद्वानों ने, खासकर रॉबर्ट एस सेगल ने, इन मिथकों को कैसे परखा है, कैसे समझा है।
अच्छा, तो आज की हमारी चर्चा सेगल की दो अहम किताबों पर आधारित है, मिथ और मिथ अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
जी हाँ, बिल्कुल, इन्हीं के आधार पर हम बात करेंगे।
और ये विषय आज भी मतलब जरूरी क्यों है? क्या आज के इस वैज्ञानिक दौर में भी ये पुरानी कहानियां हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं?
करती हैं, बिल्कुल करती हैं। ये सिर्फ अतीत की बातें नहीं हैं। सेगल यही दिखाते हैं कि मिथक हमारी संस्कृति, हमारे मनोविज्ञान और समाज को समझने की एक, आप कह सकते हैं, अहम चाबी है। ये आज भी हमारे आसपास हैं, शायद नए रूपों में। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पे निकलते हैं।
जरूर, तो शुरुआत करते हैं लेखक से, रॉबर्ट ए. सेगल। ये हैं कौन?
रॉबर्ट सेगल धर्म, मिथक और सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के एक बहुत ही जाने माने विद्वान हैं।
अच्छा।
उन्होंने स्कॉटलैंड के एबरडीन विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के लैंकेस्टर विश्वविद्यालय जैसे बड़े संस्थानों में पढ़ाया है।
ओके।
उनकी खास बात यह है कि वो सिर्फ मिथक नहीं सुनाते, बल्कि मिथकों को समझने के लिए जो सिद्धांत बने ना, उनका विश्लेषण करते हैं।
अच्छा, मतलब वो थ्योरीज के एक्सपर्ट हैं, सिद्धांतों के सिद्धांतकार।
हाँ, कुछ वैसा ही। और उनकी खूबी है कि वो मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र जैसे अलग अलग विषयों के जो जटिल विचार हैं ना, उन्हें बड़ी आसानी से समझाते हैं। उनका नजरिया इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब कई विषयों को एक साथ लेकर चलना।
ये तो बहुत जरूरी होता है ऐसे विषयों में।
बिल्कुल, वो अकादमिक दुनिया और आम पाठक के बीच एक पुल की तरह है, मुश्किल बातों को सुलभ बनाते हैं।
तो फिर सेगल का इन किताबों में मुख्य तर्क क्या है? वो मिथकों के बारे में क्या कहना चाहते हैं?
उनका केंद्रीय विचार ये है कि मिथक सिर्फ पुरानी झूठी कहानियां या मतलब आदिम सोच का कोई बचा खुचा हिस्सा नहीं है।
अच्छा।
वे मानव संस्कृति का एक बुनियादी और लगातार चलने वाला हिस्सा हैं। ये कहानियां हमारी गहरी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और यहाँ तक कि अस्तित्व से जुड़ी जरूरतें पूरी करती हैं।
दिलचस्प, यानी ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि इनका कोई जरूरी काम है।
बिल्कुल, और सेगल ये नहीं कहते कि सभी मिथकों का एक ही मतलब या एक ही काम होता है। वो तो ये दिखाते हैं कि मिथक को समझने के लिए हमें कई अलग अलग चश्मे लगाने पड़ते हैं।
कई नजरिए, जैसे?
हाँ, जैसे कभी मानव शास्त्री वाला, कभी मनोविज्ञानिक, कभी समाजशास्त्री, कभी धार्मिक। उनकी किताबें इन्हीं अलग अलग दृष्टिकोणों का एक सर्वे हैं। एक तरह से ये मिथक के अध्ययन के इतिहास की यात्रा है।
तो उनकी किताबें हमें सिखाती हैं कि पिछले, मान लीजिए, 200 सालों में विद्वानों ने मिथकों की उत्पत्ति, उनके काम और उनके मतलब को कैसे कैसे समझा है।
हाँ, बिल्कुल, ये मिथक पर सोचने के अलग अलग तरीकों की एक गाइड है। ये इस सवाल का जवाब देती है, विद्वानों ने मिथक को कैसे समझा है।
चलिए अब कुछ मुख्य सिद्धांतों की बात करते हैं जिन्हें सेगल ने अपनी किताबों में समेटाए। शुरुआत कहाँ से करें? शायद परिभाषा से, कि आखिर मिथक है क्या?
हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। सुनने में आसान लगता है, पर इसकी कोई एक परिभाषा है ही नहीं जिस पर सब सहमत हो।
सच में?
हाँ, मोटे तौर पर कहें तो ये पारंपरिक कहानियां हैं, अक्सर पवित्र मानी जाती हैं। इनमें देवता, दानव या चमत्कारी नायक जैसे अलौकिक पात्र होते हैं। और ये दुनिया कैसे बनी, इंसान कैसे आए, मौत क्यों होती है, ऐसे बड़े बुनियादी सवालों से जुड़ी होती हैं।
ठीक है, तो पहला नजरिया जो सेगल बताते हैं वो कौन सा है?
वो 19वीं सदी का है। मिथक को आदिम विज्ञान यानी प्रिमिटिव साइंस की तरह देखना। ई.बी. टाइलर और जेम्स फ्रेजर जैसे विचारक इस खेमे में थे।
अच्छा, आदिम विज्ञान, मतलब उनके हिसाब से ये दुनिया को समझने की शुरुआती कोशिशें थी।
हाँ, बिल्कुल। टाइलर ने एनिमिज्म, जीवाद का विचार दिया कि आदिम लोग हर चीज में आत्मा देखते थे। उनके लिए मिथक प्राकृतिक घटनाओं जैसे सपने, गूंज, मौत, इनको समझाने के तर्क संगत पर हाँ गलत प्रयास थे।
जैसे?
कोई उदाहरण?
जैसे सूरज देवता का रथ वाला मिथक, ये सूरज कैसे चलता है, इसकी एक प्री साइंटिफिक हाइपोथेसिस थी, एक तरह की व्याख्या।
और जेम्स फ्रेजर, उनकी किताब द गोल्डन बो भी तो बहुत मशहूर है।
हाँ, बहुत। फ्रेजर ने कहा कि इंसानी सोच का विकास हुआ है जादू से धर्म और फिर धर्म से विज्ञान की तरफ।
मिथक जादू और धर्म से जुड़े थे। कई मिथक असल में जादुई या धार्मिक अनुष्ठानों की व्याख्या थे, खासकर खेती और उर्वरता से जुड़े।
अच्छा।
जैसे कई संस्कृतियों में मरने और जी उठने वाले देवताओं की कहानियां हैं, एडोनिस, ओसिरिस वगैरह। फ्रेजर मानते थे कि ये कहानियां उन कृषि अनुष्ठानों को समझाती थी जो खुद एक तरह का गलत विज्ञान थे। तो इस नजरिए का मुख्य तर्क था, मिथक का उद्देश्य भौतिक दुनिया की व्याख्या करना है।
तो ये शुरुआती नजरिया मिथक को दुनिया समझने की एक बौद्धिक कोशिश मानता था।
लेकिन फिर ध्यान इस बात पर गया कि मिथक समाज के लिए क्या करते हैं, ना फंक्शनलिस्ट अप्रोच।
एकदम सही।
अब फोकस क्यों से हटकर कैसे और क्या पर आ गया। यहाँ ब्रोनिस्लॉ मैलिनोव्स्की का काम बहुत अहम है। उन्होंने ट्रोब्रियन द्वीप के लोगों के बीच रहकर पाया कि मिथक सोशल चार्टर यानी सामाजिक घोषणा पत्र की तरह काम करते हैं।
सोशल चार्टर
मतलब वे समाज के मौजूदा नियमों, संस्थानों, विश्वासों और नैतिक संहिताओं को सही ठहराते हैं, उन्हें वैधता देते हैं।
जैसे कोई कहानी बताती हो कि किसी जमीन पर किसी खास कबीले का हक क्यों है, क्योंकि उनके पूर्वज वहीं से निकले थे, ऐसा कुछ।
हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये उस दावे को लेजिटिमाइज करता है। और एमिल दुर्खीम जैसे समाजशास्त्रियों ने कहा कि मिथकों के देवता असल में समाज के ही प्रतीक हैं।
समाज के प्रतीक।
हाँ, मिथक और उनसे जुड़े अनुष्ठान समाज में सामूहिक उत्साह यानी कलेक्टिव एफर्वेसेंस पैदा करते हैं। सोचिए जैसे किसी बड़े त्योहार या किसी राष्ट्रीय उत्सव के दौरान सब एक साथ जोश में आ जाते हैं।
हाँ, बिल्कुल।
ये लोगों को जोड़ते हैं और सामाजिक एकजुटता बढ़ाते हैं। तो इस नजरिए से मिथक समाज को चलाने और जोड़ने का एक औजार बन गया।
इसके बाद नजरिया और बदला और मिथक का स्रोत समाज से हटकर इंसान के मन के अंदर खोजा जाने लगा, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। और यहाँ दो बड़े नाम आते हैं, फ्रॉयड और यूंग।
हाँ, सिगमुंड फ्रॉयड ने कहा कि मिथक पूरी मानवता के सामूहिक सपने हैं।
सामूहिक सपने।
जैसे हमारे अपने सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं को दिखाते हैं, वैसे ही मिथक पूरी संस्कृति की अचेतन इच्छाओं को जाहिर करते हैं। उन्होंने ओडिपस मिथक का उदाहरण दिया।
हाँ, ओडिपस वाला, वो तो काफी विवादास्पद भी रहा है।
बिल्कुल। बेटे का पिता को मारकर माँ से शादी करना, इसे उन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा, यानी बेटों में पिता के प्रति छुपी दुश्मनी और माँ के प्रति आकर्षण। ये फ्रॉयड का इंटरप्रिटेशन था।
और उनके छात्र कार्ल यूंग का नजरिया थोड़ा लफा शायद।
हाँ, काफी अलग। यूंग ने सामूहिक अचेतन यानी कलेक्टिव अनकॉन्शियस का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि हम सब एक गहरे मानसिक स्तर पर जुड़े हैं, जहाँ कुछ सार्वभौमिक पैटर्न या छवियां होती हैं।
अच्छा, कैसी छवियां?
जिन्हें उन्होंने आर्कटाइप्स कहा, जैसे हीरो, नायक, ग्रेट मदर, महान माँ, वाइज ओल्ड मैन, बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति, शैडो, छाया। ये कुछ उदाहरण हैं। यूंग के लिए मिथक इन्हीं आर्कटाइप्स की अभिव्यक्ति हैं। दुनिया भर में मिलने वाली नायक की यात्रा, हीरोज जर्नी की कहानियां असल में इंडिविजुएशन यानी आत्मखोज और मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया का प्रतीक है। फ्रॉयड से उलट यूंग मिथकों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी मानते थे, एक पॉजिटिव चीज।
ये तो बहुत गहरा है, बाहरी दुनिया से मन की गहराइयों तक का सफर। लेकिन एक और बहुत ही अलग तरीका भी है, संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, जिसके प्रणेता क्लाउड लेवी स्ट्रॉस थे। ये थोड़ा मुश्किल लगता है समझने में।
हाँ, ये थोड़ा अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। लेवी स्ट्रॉस के लिए मिथक की कहानी मतलब उसका कंटेंट उतना जरूरी नहीं जितनी उसकी छुपी हुई संरचना है। उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग चीजों को बाइनरी ऑपोजिशन यानी जोड़ों में सोचता है, जीवन बनाम मृत्यु, प्रकृति बनाम संस्कृति।
अच्छा, विरोधों में।
हाँ, और ये विरोध हमारे मन में तनाव पैदा करते हैं। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार मिथक इन बुनियादी अंतर विरोधों को सुलझाने या उनके बीच तालमेल बिठाने का एक लॉजिकल टूल है, एक तरह से दिमाग की पहेली सुलझाने जैसा।
उन्होंने भी ओडिपस मिथक का विश्लेषण किया था, पर बिल्कुल अलग तरीके से, फ्रॉयड से अलग।
हाँ, एकदम अलग। उन्होंने कहानी के मनोवैज्ञानिक अर्थ पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी संरचना देखी। उन्होंने तर्क दिया कि यह मिथक इंसान की उत्पत्ति के एक गहरे सवाल से जूझ रहा है। क्या इंसान धरती से पैदा हुआ है, ऑटोथॉर्नस ओरिजिन, या माता पिता से, बायोलॉजिकल ओरिजिन?
ये तो बिल्कुल अलग ही एंगल
है ना। उनके लिए मिथक के अजीब विवरण इस लॉजिकल पहेली को हल करने की कोशिश है। मिथक एक तरह का फिलोसॉफिकल तर्क है, दिमाग की कसरत।
और आखिर में एक नजरिया जो मिथक को उसके अपने धार्मिक संदर्भ में देखता है, मिर्चा इलियाडे का दृष्टिकोण।
बिल्कुल, इलियाडे ने जोर दिया कि धार्मिक लोगों के लिए मिथक सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक पवित्र और सच्ची कहानी है। ये कोई आम कहानी नहीं है।
सच्ची कहानी मतलब ऐतिहासिक रूप से सच्ची?
नहीं, ऐतिहासिक रूप से जरूरी नहीं, लेकिन उनके विश्वास के लिए सच्ची। ये उस खास पवित्र समय इन इलो टेम्परे की बात करती है जब देवताओं या अलौकिक शक्तियों ने दुनिया बनाई या उसे व्यवस्थित किया। मिथक का पाठ या उससे जुड़े अनुष्ठान को दोहराकर विश्वासी लोग आम सांसारिक समय से निकलकर उस पवित्र रचनात्मक पल में फिर से प्रवेश करते हैं।
अच्छा, मतलब वो उस समय से जुड़ जाते हैं।
हाँ, और इससे उनके जीवन को अर्थ मिलता है। सृष्टि का मिथक सिर्फ ये नहीं बताता कि दुनिया कैसे बनी बल्कि दुनिया को पवित्र और अर्थपूर्ण बनाता है।
वाह, तो कितने अलग अलग नजरिए हैं। आदिम विज्ञान, सामाजिक गोंद, मन का आईना, दिमागी पहेली, पवित्र इतिहास, ये वाकई दिखाता है कि मिथक कितने जटिल और रिच हैं।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या निकलती हैं, क्या कह सकते हैं हम?
सबसे पहली और जरूरी बात तो यही है, व्याख्या की बहुलता। कोई एक चाबी सारे ताले नहीं खोल सकती। हर सिद्धांत मिथक के किसी एक पहलू को उजागर करता है। मिथकों को समझने के लिए हमें कई चश्मे लगाने होंगे, खुला दिमाग रखना होगा।
सही बात है। और दूसरी बात?
दूसरी बात, मिथक आज भी प्रासंगिक हैं। ये सिर्फ म्यूजियम की चीज नहीं है, वे आज भी हमारी फिल्मों में हैं।
हाँ, सुपर हीरो फिल्में तो हैं ही।
बिल्कुल, राजनीति में हैं, राष्ट्र निर्माण की कहानियां, विज्ञापनों में हैं, ब्रांड की कहानी, ये जिंदा हैं। तर्क और विज्ञान ने इन्हें खत्म नहीं किया है।
भारत में ही देखें तो रामायण और महाभारत की कहानियां आज भी कितने रूपों में हमारे सामने आती हैं।
एकदम, हमारे मूल्यों पर, हमारी सोच पर असर डालती हैं।
और तीसरा पॉइंट?
तीसरा, सार्वभौमिकता बनाम विशिष्टता। क्या मिथक में कुछ यूनिवर्सल पैटर्न्स हैं, जैसे यंग के आर्किटाइप्स या लेवी स्ट्रॉस की संरचनाएं, या वे किसी खास संस्कृति से ज्यादा जुड़े हों जैसे मैलिनोस्की ने कहा?
इसका जवाब क्या है?
सच, शायद बीच में है। कुछ पैटर्न दुनिया भर में मिलते हैं, जैसे नायक की यात्रा, लेकिन उनका रूप हमेशा स्थानीय संस्कृति में ढलाव होता है। मतलब पैटर्न यूनिवर्सल हो सकता है पर एक्सप्रेशन लोकल।
अच्छा, और चौथा?
चौथा, उत्पत्ति बनाम कार्य। ये पूछना जरूरी है कि कोई सिद्धांत ये बता रहा है कि मिथक शुरू कैसे हुए, ओरिजिन, या ये कि वे आज क्या करते हैं, फंक्शन। दोनों अलग सवाल हैं और दोनों जरूरी हैं।
ठीक है, और पांचवा?
और पांचवा, शाब्दिक बनाम प्रतीकात्मक व्याख्या। शुरुआती विद्वान मिथकों को ज्यादातर शाब्दिक रूप से लेते थे, मतलब लिटरल, जैसे कि वो असफल विज्ञान हो।
हाँ।
लेकिन बाद के विद्वान और आज ज्यादातर विद्वान उन्हें गहरे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या आध्यात्मिक सत्यों का प्रतीक मानते हैं, सिम्बॉलिक इंटरप्रिटेशन। हमें कहानी के पीछे का मतलब ढूंढना होता है।
सैगल की काम से कुछ यादगार पंक्तियां या विचार भी निकलते होंगे जो इन बातों को समेटते हों, कुछ कोट्स जैसा।
हाँ बिल्कुल, कुछ बातें हैं जो दिमाग में रह जाती हैं। जैसे एक विचार है, मिथक आदिम मानसिकता का अवशेष नहीं बल्कि मानव चेतना का एक मौलिक तरीका है।
मौलिक तरीका, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि मिथकों के जरिए सोचना कोई पिछड़ापन नहीं बल्कि हमारे सोचने का एक जरूरी हिस्सा है। ये वो जरूरतें पूरी करता है जो शायद तर्क या लॉजिक से पूरी नहीं होती।
और ये भी है, शायद सवाल ये नहीं है कि मिथक सच्चे हैं या झूठे बल्कि ये कि वे किस तरह का सत्य व्यक्त करते हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। मतलब उन्हें वैज्ञानिक तथ्य की कसौटी पर न परखें, उनका सच अलग तरह का होता है, प्रतीकात्मक, भावनात्मक या आध्यात्मिक। वे जीवन के गहरे अनुभवों का सच बयान करते हैं।
एक और था कि हर सिद्धांत सिद्धांतकार के बारे में भी बताता है।
हाँ, मिथक का हर सिद्धांत मिथक के बारे में जितना बताता है उतना ही सिद्धांतकार के बारे में भी बताता है। ये याद दिलाता है कि हर व्याख्या में हमारे अपने समय, हमारी अपनी संस्कृति और हमारे अपने नजरिए की छाप होती है। कोई भी व्याख्या पूरी तरह ऑब्जेक्टिव नहीं होती।
और आखिर में आधुनिक संस्कृति में मिथक क्यों बने हुए हैं, इस पर भी कुछ था?
हाँ, आधुनिक संस्कृति में मिथक की दृढ़ता ये बताती है कि अकेले तर्क संगत विचार सभी मानवीय जरूरतों को अर्थ और समझ के लिए संतुष्ट नहीं कर सकता है। यही वजह है कि आज भी हमें कहानियों, सिंबल्स और मिथकों की जरूरत महसूस होती है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?
कई तरह से, जैसे शिक्षा में हम दूसरी संस्कृतियों के मिथकों को सिर्फ अजीब कहानियों की तरह न देखकर उनके गहरे अर्थ समझ सकते हैं, इससे सम्मान और समझ बढ़ेगी।
हाँ, ये तो है। और राजनीति और मीडिया में?
राजनीति और मीडिया को समझने में भी मदद मिलती है। हम देख सकते हैं कि कैसे राष्ट्रीय मिथक गढ़े जाते हैं, या विज्ञापन कैसे किसी प्रोडक्ट के चारों ओर एक कहानी, एक मिथक बुनते हैं। हम इन्हें पहचानना सीख सकते हैं और शायद थोड़े ज्यादा क्रिटिकल बन सकते हैं।
व्यक्तिगत स्तर पर भी इसका कोई फायदा है?
बिल्कुल। यूंग के आर्किटाइप्स को समझकर हम अपनी जिंदगी के पैटर्न देख सकते हैं। क्या हम हमेशा हीरो बनने की कोशिश करते हैं? क्या हम अपनी छाया यानी अपने नेगेटिव पहलुओं से बचते हैं? ये हमें खुद को बेहतर समझने में मदद कर सकता है।
आत्मचिंतन के लिए?
हाँ, जैसे कई बार हम किसी पारिवारिक कहानी या मान्यता को सच मानकर जीते हैं, जबकि वो भी एक तरह का मिथक हो सकता है जो हमारी सोच को सीमित कर रहा हो। इसे पहचानने से शायद हम ज्यादा आजाद महसूस करें
और शायद दूसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील भी बन सकते हैं।
बिल्कुल। जब हम एलियट की तरह सोचते हैं तो समझते हैं कि किसी की सृष्टि कहानी उनके लिए सिर्फ कहानी नहीं बल्कि पवित्र सत्य है, उनकी पहचान का आधार है। इससे हम दूसरों के विश्वासों को ज्यादा संवेदनशीलता से देख पाते हैं, भले ही हम उनसे सहमत ना हों।
तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सबसे बड़ी सीख क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख है बौद्धिक विनम्रता। मिथक इतने गहरे और बहुआयामी हैं कि कोई एक सिद्धांत उन्हें पूरी तरह नहीं समझा सकता। हमें खुले दिमाग से अलग अलग नजरियों को अपनाने की जरूरत है। किसी एक थ्योरी से चिपकना नहीं चाहिए।
हाँ, ये सही है। और मेरे लिए शायद ये कि मिथक सिर्फ अतीत की बात नहीं, वे आज भी हमारे साथ हैं, हमें बना रहे हैं, भले ही हम उन्हें पहचान ना पाएं। और मुझे वो लेवी स्ट्रॉस का विचार बड़ा दिलचस्प लगा कि मिथक दिमाग के लिए लॉजिक पजल सुलझाने जैसा है। ये एकदम अनोखा नजरिया है।
हाँ, है ना। और मुझे यंग के आर्किटाइप्स का विचार हमेशा खींचता है कि कैसे कुछ कहानियों के पैटर्न दुनिया भर में मिलते हैं, जैसे वे हमारे अंदर ही कोडेड हों। शायद हम सब के लिए सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने जीवन में, हमारे समाज में आज कौन से मिथक चल रहे हैं जिन्हें हम बिना सवाल किए सच मान रहे हैं।
ये सोचने वाली बात है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकात्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।